पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 11 ओम नमो सिद्धेव्य ओम नमो सिद्धेव्य ओम नमो सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं इन्द्रसदविन्द्याणं त्रिवर्णहितमधुरविशदवक्कर्णम् अन्तादीतगुणाणम् नमो दीनानां दिदभवानम्
आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य रचित यह पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ है।
हम पृष्ठ क्रमांक 40 पर आए। 40 देखो, यहाँ लिखा है कि वीर संवत 2477 भादरवा सुद 7 शनिवार, यहाँ से अपने को चालू करने का है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश अने काल छह द्रव्यो छे। द्रव्य कोने कहे के जे त्रणे काले पोताना गुण पर्याय थी परिणमी रह्यू छे तेने द्रव्य कहे छे।
चालीस चालीस नंबर पेज नीचे का पैराग्राफ समझा, पेज नंबर सेम है ना? चालीस
सेम है,
मिला ले ना। हाँ, जीव पुद्गल धर्म अधर्म। नहीं नहीं, नीचे का पैराग्राफ बीच में शुरू हो रहा है। देखो, सातवीं गाथा के पूर्व का प्रवचन। हाँ, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश।
देखो यहाँ द्रव्य की परिभाषा बहुत अच्छी बताई है। जे त्रणे काले, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, जे त्रणे काले पोताना गुण पर्याय थी परिणमी रह्यू छे तेने द्रव्य कहे छे। कोई द्रव्य कोई काले बीजाना कारणे परिणमे छे एम नथी। जो कारणे लीधे परिणमतू होय तो ते द्रव्यनुं द्रव्यपणुं क्यां रह्युं? कर्मने लीधे विकार थाय के कारणे लीधे सिद्ध भगवानने परिणमवू पड़े छे एम नथी। द्रव्य पोते ज पोतानी अवस्था रूपे त्रणे काले परिणमे छे। त्रणे काळथी पर्यायोपणे द्रव्य पोताना स्वभावथी ज परिणमे छे, तेमां बीजा शुं करे? माटीना परमाणुओ स्वतंत्र द्रव्य छे, ते परमाणुओ पोते स्वयं घड़ारूप परिणमे छे, कुमार ने लीधे नहीं। ये गुजराती समझते हैं बहन आप? द्रव्य पोताती परिणमतु हतु परिणमे छे ने परिणम शे, तीनों काल के बताए थे। परिणमतु हतु भूतकाल, परिणमे छे वर्तमान, और परिणम शे भविष्यकाल। एटले बीजाती ते कदी परिणम्यू नथी, परिणमतु नथी ने परिणम शे पण नहीं। निगोद वक्ते पण जीव पोते पोताना गुण पर्याय थी ज परिणम्यो हतो, अने सिद्ध दशामां पण पोते पोताना गुण पर्याय थी ज परिणमे छे। त्रणे कारणा भावपने द्रव्य पोते परिणमी रह्युं छे। जगतमां अनंतानंत आत्माओ छे। निगो ये छो लिखा है, ये छो बराबर है के छे बराबर है? निगोदना अनंत जीवो छे। सर्वज्ञ भगवाने एक समय में त्रण काल त्रण लोकनुं ज्ञान छे एवी वात सर्वज्ञ सिवाय, सर्वज्ञनी श्रद्धा सिवाय બીજા માણી શકે નહીં. જગતના છ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવમાં રહેલા છે, તેઓ પરિણમનશીલ હોવા છતાં કાયમ ટકનારા છે. યાની પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા એસા હિ સ્વભાવ હૈ, પરિણમતે હુએ કાયમ ટિકતા હૈ, ઓર કાયમ ટિકતે હુએ કાયમ પરિણમતા હૈ. પરિણમતો તેનો નાશ થઈ જતો નથી, પણ સ્વભાવે નિત્ય ટકીને પરિણમે છે. કોઈ પદાર્થ કોઈ બીજા પદાર્થમાં ભળી જતો નથી અને મિક્સ હોતા નહીં, એકમેક નહીં હોતા. એક ક્ષેત્રે રહેલા હોવા છતાં જગતમાં જીવ કે અજીવ કોઈ પદાર્થ પોતાના સ્વરૂપને છોડતો નથી. જીવ પૂતગલને પરિણમાવે એ વાત રહેતી નથી. શરીર પણ પૂતગલો પરિણમે છે, જીવ તેને પરિણમાવતો નથી. જીવ પોતે પોતાના અપરાધથી રાગાદી કરે છે, પૂતગલ તેને પરિણમાવતા નથી. હું પરણે પરિણમાવું એમ માને તેને અનંતાનુબંધીનો લોભ છે. પહેલો ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મ છે, તેમાં ક્રોધનો અભાવ છે. બીજા માર્દવ ધર્મમાં માનનો અભાવ છે. ત્રીજા આર્જવ ધર્મમાં માયાનો અભાવ છે. ચોથા શૌચ ધર્મમાં લોભનો અભાવ છે. એમ પહેલા ચાર ધર્મમાં ક્રોધ માન માયા લોભનો અભાવ બતાવ્યો છે. સ્વામી કાર્તિકેયનું પ્રેક્ષામાં તો કહે છે કે સંસારના લગ્ન વગેરે કાર્યોમાં લક્ષ્મી ખર્ચવાનો લોભ કરે તો તે માયા નથી, પણ ત્યાં તો છૂટથી ખર્ચવાનો ઉલ્લાસ આવતો હોય અને ધર્મના પ્રસંગમાં લક્ષ્મી ખર્ચવાનો લોભ કરે તો તેને માયા કપટને લોભ છે. તેને દેવગુરુ ધર્મ પ્રત્યે ઉલ્લાસ નથી ને સંસારની રુચિ છે, એટલે તેને અનંતાનુબંધી લોભ છે. જડ પદાર્થનો રચકન મારો નથી, તે તેના સ્વભાવથી નિત્ય ટકીને પલટનાર છે ને હું મારા ચૈતન્ય સ્વભાવથી નિત્ય ટકીને પલટનાર છું. આવી દ્રષ્ટિ કરે તો ઘણી મમતા ટળી જાય. પહેલા યથાર્થ વસ્તુ સ્વભાવ જેમ છે તેમ સમજવો જોઈએ, તો જ સમ્યક જ્ઞાન અને ધર્મ થાય. હવે સાતમી ગાથામાં કહે છે કે જગતના છ દ્રવ્યો પરસ્પર મળેલા એક ક્ષેત્રે છે તો પણ તેઓ પોતપોતાના સ્વરૂપને છોડતા નથી.
મેરો પ્રશ્ન હૈ, યે અભી બીચ મેં ક્ષમા માર્દો આર્જો કહાં સે આયા? હાં મિલી ભાઈ, વિષય છોડ કે યહાં કે ઉસકી બાત ક્યું કી? પ્રવચન કી ડેટ દેખો, ભાદરવા સુધી સાફ છે ને, એટલે ઉસકી વાત આવી ગઈ છે. હા, પર્યુષણ પર્વ હે ને, પંચમી ષષ્ઠી તીસરા દિવસ કા તો ઇસકો યાદ કિયા હૈ. ચલો આગે, અભી હમ સાત નંબર કા પઢેંગે શ્લોક.
અન્નોન્નમ પવિસંતા દિંતા ઓગા સમન્ન મન્નસ મેલંતા વિયનિચ્ચમ સગમ સ્વભાવમ ન વિજહંતિ અન્યોન્યમ પ્રવિશંતિ દદંત્યવકાશમનોન્યસ્ય મિલંત્યપિ ચ નિત્યમ સ્વકમ સ્વભાવમ ન વિજહંતિ અન્યોન્યથાય પ્રવેશયે અન્યોન દેહવકાશને અન્યોન મિલન છતા કલી છોડે ન આપ સ્વભાવને.
એ હમ પહેલે ગુજરાતી પઢ લેતે હૈ, બાદ મેં સંસ્કૃત કે સાથ પઢેંગે. તેવો યાની દ્રવ્યો એક બીજામાં પ્રવેશ કરે છે, અન્યોન્ય અવકાશ આપે છે. અન્યોન્ય એટલે એકબીજાને પરસ્પર ક્ષીર નિર્વત મળી જાય છે. यानी क्षीर यानी पानी और दूध जैसे एकत्र कहने के बाद उसका डिफरेंस नहीं पता लगता है, ऐसे ये द्रव्य जो है वो उसी तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं। तोपन सदा पोत पोताना स्वभाव ने छोड़ता नहीं, यानी छह द्रव्य एकमेक एक ही एक क्षेत्र में रहते हुए भी अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है, परद्रव्य रूप कभी होते नहीं है। अन्योन्यम प्रविशन्ति ते वो एक बीजा में प्रवेश करे छे, यानी प्रवेश करे छे ने एक बीजा ने अवगान आपे छे। अन्योन्यस्य अन्योन्य अवकाशम वद ददन्ति, अवकाश आपे छे अन्योन्य ते एक बीजा ने अवकाश आपे छे एटले अवगान आपे छे। मिलंती परस्पर क्षीर नीरवत मळी जाय छे, अपि च तोपन नित्यम सदा स्वकम स्वभावम पोतपोताना स्वभाव ने न बिजहंती छोड़ता नथी।
यहाँ थोड़ा लेख देते स्टेशन आचार्य की टीका उसको पढ़ेंगे। पहले तो बात बताए तो इति काल सहित तो 85 काया नाम द्रव्य संज्ञा कथन रूपे न गाथा गया। गई हुई गाथा का विषय क्या था वो बताया कि पांच द्रव्यों के नाम वगैरह बताए, काल सहित 85 कायन के नाम बताए। अथ षण्णां द्रव्याणां यानी छह द्रव्य परस्परम अत्यंत संकरे, परस्पर में अत्यंत संकर होना यानी उसकी खिचड़ी होना, मिल जाना, इकट्ठा होना, मिक्सर हो जाना। ऐसा होने पर भी स्वकीय स्वकीय स्वरूपात अच्छवनम उपदिशति, अपने अपने स्वरूप से अच्छवन यानी छूटते नहीं है, अपना अपना स्वरूप छोड़ते नहीं है, ये बात यहाँ बताई जा रहा है। अब ये जो बोल्ड लिखा है वो तो गाथा के शब्द है। अन्योन्यम पविसंता अन्य क्षेत्रात क्षेत्रांतर प्रति परस्पर संबंधार्थम आगंचनता, यानी एक दूसरे के संबंध में आते हैं। दीनता ओगासम अन्न अन्नस यानी क्या कहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो परस्पर में उनका संबंध प्राप्त होता है, और संबंध होने पर क्या करते हैं तो आगतानाम परस्परम अवकाश दानम ददतः, यानी जो आए हुए को तो परस्पर एक दूसरे को अवगाहना देते हैं। मेलनताविना या निच्छम अवकाश दानानंतरम परस्पर मेलापकेन स्वकीय अवस्थान काल पर्यंतम युगपत प्राप्ति रूपः संकरः, संकरेने परस्पर विषय गमक रूप व्यतिकरः ताभ्याम विना नित्यम सर्वकालम तिष्ठन्तोपि। क्या कहते हैं यानी अवकाश दिया एक दूसरे को, अवकाश देने पर क्या होता है एक दूसरे के रूप वो मिलाप होता है उनका, मिली हुई अवस्था में अपने अवस्थान काल पर्यंत अपने वहाँ रहने के काल पर्यंत अपने अपने कारण वहाँ रहे हैं, एक दूसरे के कारण नहीं है। जैसे कर्म आकर यहाँ रुके उसके अपना काल है नक्की है, तो तब तक वो युगपत प्राप्ति रूप होना यानी संकर होना मिल जाना मिक्सर होना उसका, इस तरह से वहाँ रहते हैं। और हमेशा रहने पर भी अभी आगे की बात है, सग स्वभाव न विजहंती स्वस्वरूपम न त्यजंती, अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है। अथवा अन्योन्यम प्रविशन्तः सक्रियवन्तः जीव पुद्गलापेक्षया आगतानाम अवकाशनम ददतः इति सक्रिय निक्रिय द्रव्यम मेलापकापेक्षया, यानी या तो जीव और पुद्गल इनका मेलाप होता है, या जो कहते हैं कि सक्रिय द्रव्य और निक्रिय द्रव्य उनका मेलाप उसकी अपेक्षा से नित्यम सर्वकालम मेलापकेन तिष्ठन्त इति धर्माधर्म आकाश काल निक्रिय द्रव्यापेक्षया, यानी अलग अलग द्रव्यों की अपेक्षा कहते हैं ये जो चार निष्क्रिय द्रव्य है उसकी अपेक्षा भी उनका मेलाप होकर तिष्ठते हैं इति षड् द्रव्य मध्ये। अभी ये छह द्रव्यों में ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत कृष्ण नील कापोत अशुभ लेशादि समस्त परद्रव्यालंबन उत्पन्न संकल्प विकल्प कल्लोल माला रहितम। क्या कहते हैं ये अपना ज्ञान कैसा है आनंद कैसा है उसको बताते हैं। तो ये जो तो अभी बताए ना सब ख्याति लाभ पूजा लाभ दृष्ट वगैरह वगैरह जो अशुभ लेशा ये सब जो परद्रव्य के आलंबन से उत्पन्न संपूर्ण संकल्प विकल्पों की कल्लोल माला से रहित अपना स्वरूप का अनुभव अभी बता रहे। वीतराग निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न, वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न ऐसा परमानंद रूप सुख रसा स्वाद परम समरसी भाव स्वभावेन, यानी अपने परमानंद रूप सुख रस के आस्वाद लेने वाले परम समरसी भाव रूप स्वभाव जो है उससे स्व संवेदन ज्ञानेन गम्यम, अपने स्व संवेदन ज्ञान से ही जो गम्य है, गम्य ने प्राप्य है, प्राप्य ने अनुभव में आता है, सालंबम आधारम भरितावस्थम शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेन शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन इति पाठः। ये इस षड द्रव्यों के बीच में ये जो अपने जो स्वसंवेदन ज्ञान से गम्य ऐसा जो अपना स्वभाव भाव है, पारिणामिक भाव है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से उसका ग्रहण करना चाहिए। निश्चय नयेन स्वकीय देहांतर्गतम शुद्ध जीवासिकाय संज्ञम जीव द्रव्य में उपादेयमिति भावार्थः। हर एक गाथा में यही कहेंगे कि जीवासिकाय ने शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय है। अब आगे भी कुछ बता रहे, संकल्प और विकल्प किसको कहना। यत पुनः अन्येषाम एकांतवादिनाम राग द्वेष मोह सहितानाम अपि वायु धारणादि सर्वशून्य ध्यान व्याख्यानम आकाश ध्यानम वा तत्सर्वम निरर्थकम एव। क्या कहते हैं, अन्य मति जो बताते हैं ना, ये जो कोई ध्यान वगैरह उनकी बातें बताती है तो वो तो कहते कि वो सब निरर्थक है। कैसा है वो, अन्य एकांतवादियों ने बताए हुए, और कैसे राग द्वेष मोह सहित है, ऐसे वायु धारणादि वायु धारणा वगैरह जो कोई बताते हैं, या सर्वशून्य ध्यान कहते हैं सर्वशून्य का ध्यान करो या आकाश का ध्यान करो, ऐसे अलग अलग जो उनके व्याख्यान होते हैं वो सभी निरर्थक है। यानी अपने जिनेन्द्र भगवान की बात छोड़कर बाकी जो कुछ बातें बताई है ऐसा करो वैसा, वो सब निरर्थक है। संकल्प विकल्प यो हो भेद कथ्यते, ये संकल्प किसको कहना और विकल्प उसकी बात यहाँ बताते हैं। बहिर्द्रव्य चेतन अचेतन मिश्रे मम इदम इत्यादि परिणाम संकल्प। बाह्य द्रव्यों में, बाह्य द्रव्य में कौन है, चेतन है यानी जीव द्रव्य है, अचेतन है और मिश्र भी है, जीव है या पुद्गल आदि अचेतन द्रव्य है। मिश्र कहने से वो गहनों सहित कोई हमारे स्त्री पुत्र आदि है, उसको यहाँ मिश्र भी कहते हैं। ये उनमें मम इदम ये मेरे है ऐसा जो परिणाम है उसको संकल्प कहा। अभ्यंतरे सुखी अहम दुखी अहम इत्यादि हर्ष विषाद परिणामों विकल्प। क्या कहते हैं, बाह्य पदार्थों में ये मेरे है ऐसा उसको संकल्प कहते हैं, और मैं अंतरंग में मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसे जो हर्ष विषाद के परिणाम है उसको विकल्प कहा। इति संकल्प विकल्प लक्षणम ज्ञातव्यम, यानी संकल्प और विकल्प का ये लक्षण बताया। वीतराग निर्विकल्प समाधौ, यानी वीतराग निर्विकल्प समाधि में वीतराग विशेषणम अनर्थकम इति उक्ते सति परिहारमाह। यहाँ कहते कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में वीतराग शब्द क्यों डाला, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो अनर्थक है, तो उसका परिहार करते हैं, यानी वो योग्य क्यों है बता रहे। आत्र रौद्र रूपस्य विषय कषाय निमित्तस्य अशुभधानस्य वर्जनार्थत्वात्। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ तो ध्यान की प्राप्ति है ना, वायु धारणा अन्य जो ध्यान है वो तो निरर्थक ऐसा बताया था, और वीतराग निर्विकल्प जो समाधि सुख उत्पन्न वो ध्यान ही ध्यान बताया था, तो कहते कि यह आर्त और रज ध्यान को यहाँ नहीं कहना है, तो उसका निराकरण करने के लिए फिर पढ़ते देखो। आर्त्र रौद्र रूपस्य, ये आर्त्र रौद्र ध्यान कैसे है, विषय कषाय निमित्त हो और कैसे है, अशुभ ध्यान है, उसके वर्जनार्थत्व उसका वर्जन करना है उसको छोड़ने के लिए। हेतु हेतुमत भाव व्याख्यानत्वादवा, यानी हेतु और हेतुमत ऐसे उसके बताने के लिए। कर्मधारे समासत्वादवा भावना ग्रंथे पुनरुक्त दोषा भावत्वादवा स्वरूपस्य विशेषणात्वा दृढ़ीकरण अर्थात्वा, ये सब वितराग निर्विकल्प समाधि ये शब्द क्यों डालना, तो उसके इतने कारण बताए कि अशुभ ध्यान को नहीं बताना था या कर्मधारा समासा से, वो व्याकरण की भाषा है, या पुनरुक्त दोष का अभाव, यानी पुनरुक्त दोष नहीं है ये बताने के लिए और स्वरूप का विशेषण करने के लिए, उसका दृढ़ीकरण करने के लिए ये वितराग निर्विकल्प समाधि व्याख्यान काले सर्वत्र ज्ञातव्यम। हर बार वो ऐसा ही कहेंगे, वितराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, हर जगह उसका ये अर्थ समझना। वितराग सर्वज्ञ निर्दोषी परमात्मा शब्दादिषु अपि अनेन एव प्रकारेण पूर्व पक्षे कृते यथा संभवम परिहारो दातव्या इति। यानी जब वो वितराग सर्वज्ञ निर्दोष परमात्मा शब्द जो है उसमें भी यही बात समझना चाहिए, यतएव कारणात् यथासंभव परिहारो दातव्य, यानी उसका भी यथासंभव निराकरण करना, परिहार करना है ना, उसका रूल आउट करना, निराकरण करना, त्याग करना, यतएव ने इसी कारण कारणात्, यतएव कारणात् वीतरागः ततएव कारणात् निर्विकल्प समाधि इति हेतु हेतुमत भाव शब्द अर्थः। यानी जिसलिए वितराग शब्द बताया, विशेषण बताया है, इसीलिए निर्विकल्प समाधि भी उसी लिए वे शब्द आया है। अभी आप अमृतचंद्राचार्य जी के वो गुजराती में अनुवाद वो पढ़ेंगे,
गुजराती अनुवाद पढ़ेंगे अभी हम। आई छह द्रव्यों ने परस्पर अत्यंत संकर हुआ छता, संकर ने एकमेक हो गए, मिक्सचर हो गए छोटू से, क्या कहा, आई छह द्रव्यों ने परस्पर अत्यंत संकर हुआ छता, ने मिश्रित हुआ छता, ते वो प्रतिनियत एटले पोताना पोत पोताना निश्चित स्वरूप थी च्युत थता नथी, एने अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं है, तेती पोत पोताना स्वभाव थी च्युत नहीं थता हुआ थी परिणाम वाला हुआ छता पन ते वो नित्य छे एम पूर्वे छठी गाथा में कहूँ हतू, अने तेथी ज तेवो एकपणु पामता नथी, अने जो के जीव तथा कर्म ने व्यवहार नयना कथन थी एकपणु कहवामां आवे तो पण तेवो जीव तथा कर्म एक बीजाना स्वरूप ने ग्रहता नथी, अने निश्चय नहीं से और व्यवहार नहीं से दोनों ही बातें बताई है यहाँ पर। जहाँ एक जीव छे त्या बीजा अनंत आत्माना प्रदेशो छे, क्या कहना चाहते हैं समझ में आया। अभी एक मनुष्य जीव है तो उसके उसके आधार से अनेक त्रस जीव भी रहते हैं, निगोदिया भी रहते हैं, तो क्या कहें, जहाँ एक जीव छे त्या बीजा अनंत आत्माना प्रदेशो छे। आपके पेट में वर्म्स होंगे कि नहीं,
और सूक्ष्म निगोद है जिसको शरीर के आधार से नहीं है, पांचों स्थावर का एक जो सूक्ष्म है वो जहाँ ये आत्मा के प्रदेश है वहाँ वे भी है ना, ऐसा हर एक जीव में लगा लो, एक निगोद है वहाँ अनंत तो है मालूम ही है, परंतु जहाँ एक मनुष्य है या अन्य कोई जानवर है बड़ा, तो उसके शरीर के आधार से बादर निगोद रहते वो तो जुदे, और जो शरीर के आधार से नहीं रहे ऐसे सूक्ष्म निगोद या सूक्ष्म पांचों कायिक जीव है वो पूरे लोक में ठसाठस भरे है। हाँ, तो जहाँ एक जीव के प्रदेश है वहाँ अनंत जीवों के प्रदेश है, क्योंकि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है और ऐसे जीव अनंत है, तो नेचुरली लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत जीवों के प्रदेश है। हाँ, एक सिद्ध है उनके, हाँ वो भी है और वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव है, वो भी लेना।
अच्छा,
तो देखो आप केवल शरीर की बात कर रहे हैं, जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ अन्य आत्मा के भी प्रदेश है, बस इतनी बात ले लो। शरीर तो वो पुद्गल देह में चला जाएगा।
क्या लिखा देखो, जहाँ एक जीव छे त्यां बीजा अनंत आत्माना प्रदेशो छे, आत्माना प्रदेशो छे एम बतावे छे, त्यां बीजा अनंत पुद्गलो कर्म भी होंगे ना वो जीव के, धर्मास्ती अधर्मास्ती आकाश ने काल ए छह द्रव्यो रहेला छे, क्षेत्र अपेक्षा ए परस्पर संबंध होवा छता ते वो अत्यंत भिन्न भिन्न छे, कोई कोई मां भड़ी जतु नथी, एक क्षेत्रे रहेवा मां कोई कोई ने बाधा करता नथी, एक ज क्षेत्र मां छह द्रव्यो ने भेगा रहेवा मां काई संकड़ाश पड़ती नथी, सदाय छह द्रव्यो एक क्षेत्राव गा पने रहे छे, तोपन दरेक द्रव्य पोत पोतानी स्वभाव शक्ति थी त्रणे काळे जुदा जुदा ज छे, दरेक द्रव्यनो परिणाम पोताना स्वभाव थी थाय छे, पोताना परिणाम ने छोड़ी ने कोई द्रव्य बीजानी साथे भळी जतु नथी, भळी जतु नथी ने मळतु नथी एनी साथे, જો તો ખરા દ્રવ્યોની સ્વતંત્રતા વીંછી કરડે તેથી આત્મદ્રવ્યને બાધા નથી પહોંચતી, આત્મદ્રવ્યના પરિણામ આત્મામાં શરીરના શરીરમાં ને વીંછીના વીંછીમાં એક એક ક્ષેત્રે રહેવા છતાં દરેકના પરિણામ ભિન્ન ભિન્ન છે, કોઈ કોઈના પરિણામમાં બાધા પહોંચાડું છે, બાધા પહોંચાડતું નથી, વિંચી કરડ્યો તેને આત્માના પરિણામ બગાડી નાખ્યા એમ નથી, આત્માના પરિણામમાં આત્મા પોતાથી જ પરિણમે છે, તે વખતે દ્વેષ થાય તો તે પરિણામ આત્માથી પોતાથી જ થયા છે, વિંચીને કારણે થયા નથી, કોઈ દ્રવ્ય કોઈને બાધા ઉપજાવતું નથી તેમજ મદદ પણ કરતું નથી, સૌ પોતપોતાની સત્તામાં રહેલા છે, કોઈએ બીજાની સત્તામાં પ્રવેશ કર્યો નથી તો તે બીજામાં શું કરે, જો પદાર્થ પોતાની સત્તા છોડીને બીજાની સત્તામાં પ્રવેશ કરે તો પદાર્થનો જ અભાવ થઈ જાય, અને આપણે આપણે સ્વચતુષ્ટય મેં પ્રત્યેક રહેતે હૈ, અગર કોઈ સ્વચતુષ્ટય સે ઉઠકર પરચતુષ્ટય મેં પ્રવેશ કરે તો દ્રવ્ય કા નાશ હોગા એસા બતા, जो के छह द्रव्यो एक क्षेत्र रहे छे।
देखो सोनी बेन आपको मालूम है छह द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं, आकाश के एक ही क्षेत्र में छह द्रव्य, जहाँ धर्म द्रव्य के प्रदेश है वहीं पर अधर्म द्रव्य द्रव्य, आकाश तो है ही, वहाँ पर पुद्गल भी है जीव भी है, तो उनको ये संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं आपको मालूम है, यहाँ लिखा ना छह द्रव्य एक क्षेत्र रहे चने, एक ही क्षेत्र में छह द्रव्य रहते हैं, हाँ एक क्षेत्रावगाह संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं उसको, यानी उसमें क्या होता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध का अर्थ क्या है, एक ही क्षेत्र में सबकी आपस में अवगाहना एक दूसरे को देते हुए भी कोई एक द्रव्य का स्वरूप दूसरे द्रव्य रूप हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ है, ये मुख्य बात है। देखो ये गाथा में कितनी इसकी स्वतंत्रता सिद्ध होती है,
देखो यहाँ पर दो बातें बताते हैं कि यानी ऐसा बताया जाता है कि लोकाकाश का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है कि जहाँ जिस पर छह द्रव्य नहीं रहेंगे, क्या समझा, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य है, तो ये कैसा पॉसिबल है ऐसा अपने को लगता है, कभी देखते हैं अपन, पहले तो हमें प्रत्येक द्रव्य का आकार मालूम होना चाहिए, यानी कितने क्षेत्र कितना क्षेत्र है व्याप्ता है वो प्रत्येक द्रव्य
प्रदेशी है,
हाँ
कितने प्रदेशी है
आप बताएंगे, प्रत्येक द्रव्य का प्रदेश कितने कितने हैं, जीव असंख्यात प्रदेशी, भूतगल एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, धर्म और अधर्म असंख्यात प्रदेशी, काल एक प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी, अभी हम लोकाकाश को ही देखते हैं, आकाश को जरा पूरे आकाश को नहीं ले रहे, तो देखो पूरे जितना लोकाकाश है उसको लोक कहेंगे, उस लोक में जितने प्रदेश है उतना प्रदेश ही तो धर्म द्रव्य है, उतना प्रदेश ही तो अधर्म द्रव्य है, यानी लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य का भी अस्तित्व है, अधर्म द्रव्य का भी अस्तित्व है। और जीव कितने हैं प्रदेशी, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन क्या है, जीव असंख्यात प्रदेशी है लेकिन जीवों की संख्या अनंत है, यानी छोटे से जगह में इतने जीव रहते हैं, तो कैसे एक दूसरे के अपने आत्मा को अवगाहना देते हैं, दूसरे के आत्मा के प्रदेशों को भी अवगाहना देते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रदेश पर जीव द्रव्य है। और हमने देखा है कि ये सूक्ष्म स्थावर जीव है, सूक्ष्म एकेंद्रीय, और सब पूरे लोकालोक में खचोखच भरे हैं, यानी प्रत्येक
लोक में
खचाखच भरे हुए हैं, यानी प्रत्येक प्रदेश पर कोई न कोई आत्मा का प्रदेश तो है ही है, ये बात नक्की हो गई। अब तीन हो गए, और आकाश का जो लोकाकाश है उसमें तो प्रत्येक प्रदेश है ही है उसके, तो चार हो गए। अभी कहते हैं कि उद्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी होने की, मतलब स्कंद रूप होने की उसमें कैपेसिटी है, योग्यता है, इसलिए असंख्यात लोक जो है उसमें अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं,
असंख्यात प्रदेशी लोक में,
असंख्यात प्रदेशों में, यानी पूरे लोक में पुद्गल व्याप्त है। और हमने ये भी देखा है कि एक महास्कंद नाम का एक स्कंद है, तो पूरे लोकाकाश जितना बड़ा है, ख्याल में। अब इतना ही भी हो गया, अभी काल द्रव्य रह गया, काल द्रव्य तो एक प्रदेश ही है, लेकिन काल द्रव्य की संख्या है असंख्य, वो कितना असंख्य, तो लोक प्रमाण असंख्यात, यानी लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालानुस्थित है, और वो कालानुस्थित है यानी क्या हो गया है कि प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, यानी अभी ये निश्चित हो गया कि प्रत्येक द्रव्य के लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक द्रव्य के प्रदेश निश्चित है, यानी ये बात ऐसी निश्चित हो गई कि लोकाकाश में एक ही प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहाँ छह द्रव्य नहीं होंगे, यानी होते ही है। तो यहाँ पर यही बात चल रही है, उन्होंने अलग तरीके से बताया, मैंने अलग तरीके से बताया, है तो एक ही बात,
मैंने ऐसा होने पर भी वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, ये लेना। एक क्षेत्रावगाह कैसे है और कितने मिले जुले वो सब बता दिया, अब ऐसा होते हुए भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, अब ये पढ़ेंगे आप।
हाँ देखो पेज नंबर 43, नया पैराग्राफ शुरू होता है ना, कि जो के छह द्रव्यो एक क्षेत्र रहे छे, अभी समझ में आया क्या कहना चाहते है, तो पण पोतपोतानी स्वतंत्र सत्ता ने कोई पण छोड़तो नथी, एटले ते द्रव्यो परस्पर भड़ी ने एकमेक थई जता नथी, बधा पोतपोताना स्वभाव थी जुदा जुदा रहे छे, बधा द्रव्यनो एवो स्वभाव छे के परस्पर एक बीजा ने स्थान दान आपे छे, इन्हें अवगाना देते हैं। देखो देखो अभी हमने जो पहले पढ़ा था, तो आकाश द्रव्य का विशेष गुण कौन सा है मालूम है आपको, आकाश द्रव्य का विशेष गुण अवगान है, तो अवगान देना, लेकिन अभी हमने क्या देखा, प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाना देता है, अवगाना अवगान तो शक्ति जो है वो आकाश द्रव्य की ही क्यों है ऐसा बताते हैं, क्योंकि एक प्रदेश में पूरे अनंत जिसको हम कहेंगे कि परमाणु को अवगाना देने की क्षमता आकाश के एक द्रव्य में है, और अनेक जीवों के अभी जैसा देख लो कि निगोदिया जीव है, तो एक इतने से असंख्यात प्रदेश में अनंत जीव है, तो अनंत जीवों के एक एक प्रदेश भी गिनो तो कितने होंगे, और वो एक एक प्रदेश में जो उसको अवगाना देने की क्षमता है, फिर बाकी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य सबको अवगाना देते, इतना बड़ा बड़े स्केल में अवगाना देने की शक्ति है, इसलिए आकाश द्रव्य की अवगान है तो ये शक्ति बताइए
उसका विशेष गुण बताए ना आकाश द्रव्य का, क्योंकि आकाश द्रव्य के अनंत वहाँ भाग है, लोकाकाश वो आकाश पूरे आकाश का अनंत वहाँ भाग है, यानी उसके अनंत वे भाग में उसने बाकी अन्य पांचों द्रव्यों को समा दिया, इसलिए उसकी अवगाहन शक्ति को विशेष कहने में आती है। बाकी है तो सब में ये अवगाहन एक दूसरे को देते ही है ना, तभी तो प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य रहेंगे,
यानी प्रत्येक द्रव्य को एक दूसरे को अवगाहन देने की क्षमता है।
सब देते हैं ना एक दूसरे को, नहीं तो एक क्षेत्र वगैरह संबंध नहीं बन सकता।
क्या जगह देखो सेकंड लाइन नया पैराग्राफ की, बधा पोत पोताना स्वभाव थी जुदा जुदा रहे छे, बधा द्रव्यो नो एवो स्वभाव छे के परस्पर एक बीजा ने स्थान दान आपे छे, यानी अवगाना देते हैं एक बीजा ने, परमाणु वगैरह ने ज्ञान नथी पन पोते जहाँ होए त्यां बीजा अनंता परमाणु वगैरह रहे तो पन तेने विघ्न करता नथी, एटले परस्पर एक बीजा ने अवकाश आपे छे एवो तेनो स्वभाव छे, कोई कोई ने नड़ता नथी यानी तकलीफ देते नहीं, ते एक बीजा ने जग्या आप्या विना रहता नथी, एक एक शरीर ना आश्रय अनंत निगोद जीवो रहेला छे। देखा छता त्या संकड़ाश के परस्पर वादा थती नथी, निगोद ने के परमाणु ने काई खबर नथी के आई बीजा अनंत आत्मा ने अनंता परमाणु रहेल छे, तेनो स्वभाव एवो छे के परस्पर एक बीजा ने रहेवामां विघ्न करता नथी। आत्मा अने कर्म व्यवहार नहीं बंधा अपेक्षा एक जणाय छे, पर निश्चय थी बन्ने पोत पोताना स्वरूप में जुदा जुदा छे, कहीं पोताना स्वरूप ने छोड़ी ने पर साथे एकमेक थता नथी। अभी चालू अधिकार में पंचास्ती काय नी आठमी गाथा वंचाय छे, तेमा पदार्थनी सत्तानु स्वरूप कहे छे।
सत्ता सौवपयत्था सविसरुवा अनंत पज्जाया भंगुपादुवत्ता सपडिवक्खा हवदीका, सत्ता सर्वपदार्था सविश्वरूपा अनंत पर्याया भंगोत्पाद द्रव्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवेत्येक्या सर्वार्थ प्राप्त सविश्वरूप अनंत पर्ययवंत छे सत्ता जनमलय द्रव्यमय छे एक छे सविपक्ष छे।
सिर्फ गुजराती पढ़ता हूँ, सत्ता उत्पाद वे द्रव्यात्मक एक सर्व पदार्थ स्थित, एक सर्व पदार्थ स्थित सब सविश्व रूप अनंत पर्याय में अने सप्रतिपक्ष छे। ये सत्ता यानी किसकी, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता की बात कह रहे हैं, के सत्ता इतले सत्ता भंग उत्पाद द्रव्यात्मिका, भंग का अर्थ व्यय उत्पाद और द्रव्य, तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, कौन सत्ता और कैसी है, एक आ एक है सर्व पदार्थ, सर्व पदार्थ स्थित है सत्ता, सर्व पदार्थ स्थित है सविश्व रूपा सविश्व रूप अनंत पर्याय, अनंत पर्याय मय अने सप्रतिपक्षा सप्रतिपक्ष भवती छे।
देखो ये आगे 44 पेज पर, ये करीबन आधा पेज तो वो कौन कौन सी गाथाएं गए और आने वाले गाथाओं का विषय क्या वो बताए, वो अभी हम उसको गौण करके थोड़ा जहाँ बोल्ड लिखा है ना वहां से पढ़ेंगे, उसके दो वाक्य ऊपर हवदी लिखा है ना वो बोल्ड में, उसके दो लाइन ऊपर अथ अस्तित्व स्वरूपम निरूपयति, अभी अस्तित्व का स्वरूप बता रहे हैं, अथवा सत्ता मूलानी द्रव्याणी इति कृत्वा पूर्वं सत्ता स्वरूपं बणित्वा पश्चात् द्रव्य व्याख्यानं करोमि इति अभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति। क्या कहते हैं कि पहले ये जो सत्ता मूल जो द्रव्य यानी द्रव्यों की सत्ता ही उसके पहले में पहले बताकर फिर द्रव्यों का व्याख्यान बताऊंगा ऐसा मन में पकड़कर मन में सोचकर उन्होंने यहाँ सत्ता की बात पहले उठाई है। अभी जो भगवान ने बताया उसकी बात बताया। हवदी यानी भवती होती है, का करती है सत्ता यानी सत्ता होती है, कथम भूता कैसी होती है सर्वपदत्था सर्व पदार्थ और कैसी होती है सविश्वरूपा सविश्वरूपा और कैसी है अनंत पज्जाया अनंत पर्याया और कैसी है भंगुपाद धुवत्ता भंग यानी व्यय उत्पाद और द्रव्यात्मक है और कैसी है एक का यानी महासत्ता रूपेण एक है। जैसे हर एक में अस्तित्व है तो इस तरह से जिसको महासत्ता कहते हैं अस्तित्व इतना ही ले लेंगे तो उसको महासत्ता कहेंगे और हर एक का अपना अपना है उसको हम अवंतर सत्ता कहेंगे। एवं पंच विशेषण विशिष्टा सत्ता तो कहते ये पांच विशेषण बताए उसके कि सर्व पदार्थात्मक है सविश्व रूप है अनंत पर्यात्मक है भंग उत्पाद व्यय रूप है और एक है। तो ये पूछते कि किम निरंकुशा निप्रतिपक्षा भविष्यति क्या वो निरंकुश सर्वथा ऐसी ही है उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है क्या तो कहते ऐसा नहीं है। तो कैसी है वो सप्रतिपक्ष है अभी वो कैसा है सप्रतिपक्ष वो बता रहे हैं। स्वद्रव्यादि चतुष्टय रूपेण सत्ता यहा परद्रव्यादि चतुष्टय रूपेण असत्ता प्रतिपक्ष सत्ता का प्रतिपक्ष क्या है तो असत्ता है। तो छह द्रव्यों की सत्ता है तो उसके प्रतिपक्ष क्या बताएंगे छह तो द्रव्य है तो मैं हूँ इसका प्रतिपक्ष क्या हुआ हाँ परद्रव्य क्षेत्र अपेक्षा से नहीं हूँ ये पर प्रतिपक्ष हुआ यानी परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उसकी असत्ता है ये सत्ता का प्रतिपक्ष है असत्ता। सर्व पदार्थ सीता यहाँ सत्ता यहाँ एक पदार्थ सीता प्रतिपक्ष यानी ये सत्ता कैसी तो सभी पदार्थों में स्थित है बताई उसको महासत्ता कहा तो प्रत्येक पदार्थ की अपनी सत्ता जुदी जुदी है तो एक पदार्थ में जो स्थित सत्ता है वो सर्व पदार्थों में स्थित सत्ता का प्रतिपक्ष है जिसको हम अवान्तर सत्ता कहें। मूर्तो घट सौवर्णो घट ताम्रो घट इत्यादि रूपेण सविश्व रूपाया नाना रूपाया एक घट रूपा सत्ता प्रतिपक्ष जैसे घट ये हम कहें एक सत्ता है घट की पर वो कैसा है तो उसका वो सुवर्ण वाला घट है या ताम्र घट है मूर्त घट है इत्यादि जो सविश्व रूपेण अनेक रूप जो है सविश्व का अर्थ होता है वो विश्वमय नहीं हुआ है विश्वमय ने अनेक रूपता यानी नाना रूपता होती है यानी एक घट रूप सत्ता है उसको ये अनेकपना ये उसका प्रतिपक्ष हुआ। अथवा विवक्षित एक घटे वर्णाकारादि रूपेण विश्व रूपाया सत्ताया विवक्षित एक गंधादि रूपा प्रतिपक्ष यानी एक ही घट में वर्ण जुदा उसका वर्ण है उसका आकार है उसका अन्य अन्य उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा उसका अन्य वर्णन करेंगे उसकी अपेक्षा से पर्टिकुलर एक गंध वगैरह या गंध कहो या वर्ण कहो एक ही की बात करने तो वो उसका प्रतिपक्ष हुआ सविश्व रूपा सका वो प्रतिपक्ष हुआ। कालत्रय अपेक्षा अनंत पर्यायः सत्ताया विवक्षित एक पर्याय सत्ता प्रतिपक्ष जो सब प्रतिपक्ष बताया ना हर एक विशेषण के लिए प्रतिपक्ष बता रहे हैं यहाँ क्या बताए वो प्रत्येक द्रव्य कैसा है तो तीन काल की अपेक्षा अनंत पर्यायत्मक है परंतु एक समय के पर्याय की अपेक्षा उसको क्या कहेंगे वो उसका प्रतिपक्ष हो गया। तीन काल के पर्याय की अपेक्षा वो अनंत पर्यायत्मक है और एक समय के पर्याय एक सिंगल है वो उसका प्रतिपक्ष हुआ। उत्पाद व्यय द्रव्य रूपेण त्रीन लक्षणाया सत्ताया विवक्षित एकस्य उत्पादस्य वा व्ययस्य वा द्रव्यस्य वा सत्ता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं ये सत्ता कैसी है तो त्रिलक्षणात्मक है उसमें तीनों एक साथ लिए उत्पाद व्यय और ध्रुवता, परंतु एक अकेले उत्पाद की सत्ता वो उसका प्रतिपक्ष है, अकेले व्यय की सत्ता, अकेले ध्रुव की सत्ता, एक एक को जुदा जुदा बताना वो उसका प्रतिपक्षक हुआ। एकस्या महासत्ताया अवांतर सत्ता प्रतिपक्ष इति शुद्ध संग्रह ने विवक्षायाम एकास महासत्ता, अशुद्ध संग्रह ने विवक्षायाम, व्यवहार ने विवक्षायाम वा सर्व पदार्थ सविश्व रूपादि अवांतर सत्ता सप्रतिपक्ष व्याख्यानम सर्वम नैगम नयापेक्षा ज्ञातव्यम। क्या कहना चाहते हैं? एक जो महासत्ता है उसके लिए अवांतर सत्ता या प्रतिपक्ष हुआ, यह सर्व शुद्ध संग्रह ने कहने से सबको इकट्ठा कर लिया तो उसको महासत्ता कहा, उसी के भेद करेंगे तो वो व्यवहार नहीं हुआ, उसको हम अवांतर सत्ता कहते हैं। यानी ये नैगम यानी दो की बात कहते हैं तो एक अपेक्षा से ये है उसकी, दूसरी अपेक्षा से उसकी, वो प्रतिपक्ष हो जाता है। एवं नैगम संग्रह व्यवहार नयत्रयेण सत्या व्याख्यानम योजनीयम, यानी अलग अलग नैगम से ये पूरी सत्ता का व्याख्यान करना चाहिए। अथवा एका महासत्ता शुद्ध संग्रह नयेन सर्व पदार्थादि अवांतर सत्ता व्यवहार नयेन इति नयद्वय व्याख्यानम कर्तव्यम। ये जो प्रतिपक्ष के लिए दो नयों की अपेक्षा से व्याख्यान करो या वो नैगम संग्रह व्यवहार तीन नयों की अपेक्षा से व्याख्यान करो। अभी लास्ट में तात्पर्य कहेंगे कौन उपादेय है। अत्र शुद्ध जीवासिकाय संज्ञस्य यानी शुद्ध जीवासिकाय नाम वाले शुद्ध द्रव्यस्य या सत्ता, शुद्ध जीव द्रव्य की जो सत्ता है सा एव उपादेय, वही उपादेय है। ये भावार्थ है, सबका भावार्थ यही समझना है, शुद्ध जीवासिकाय ही उपादेय है।
पेज नंबर 45 अनुवाद। अहीं अस्तित्वनुं स्वरूप कह्युं छे, अस्तित्व एटले सत्ता नामनो सत्नो भाव अर्थात सत्व, विद्यमान वस्तु नथी सर्वथा नित्यपने होती के नथी सर्वथा क्षणिक होती।
यानी वस्तु के बाद रुकना, विद्यमान मात्र वस्तु नथी सर्वथा नित्यपने होती के नथी सर्वथा क्षणिकपने होती, यानी पढ़ते समय जो तो क्यों तो वस्तु नथी ऐसा कहेंगे तो अर्थ नहीं बराबर होता।
विद्यमान मात्र वस्तु नथी सर्वथा नित्यपने होती के नथी सर्वथा क्षणिकपने होती। सर्वथा नित्य वस्तु ने खरेखर क्रमभावी भावोनो अभाव थवाथी विकार एटले फेरफार परिणाम क्यांथी थाय, अने सर्वथा क्षणिक वस्तु विषय ये सर्वथा की बात है, सर्वथा क्षणिक वस्तु ने विषय खरेखर प्रत्यभी ज्ञानो अभाव थवाथी एक प्रवाह पनु क्यांथी रहे। प्रत्यभिज्ञान यानी
प्रत्यभिज्ञान का अर्थ समझते हो? इन्हें कैसा? बताएंगे
आप बोलो।
देखो प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं कि हमने कोई चीज देखी तो चीज देखो पहले को कोई हमें याद आया वो देखा हुआ जाना हुआ वो उसके जैसा ही हो सकता है उसके अलग भी हो सकता है। जैसे हमने कोई काली चीज देखी हमारे पास ऐसी सफेद चीज थी या आपका काला पेन देखा मेरे पास ऐसे शेप का है मगर वो सफेद है ये क्या हुआ जोड़ रूप ज्ञान उसको कहेंगे प्रत्यभिज्ञान। यानी वर्तमान जो मति ज्ञान का भेद है वर्तमान किसी ज्ञेय को जान रहे हैं तो पूर्व में जानी हुई वस्तु के ज्ञान को उसके साथ मिलान करके जो हमारे उसके तुलनात्मक होता है उसको प्रत्यभिज्ञान के।
ये जो फिल्म लाइन में एक्टिंग करते हैं एक राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना नहीं है दूसरा ही कोई उसकी एक्टिंग करेगा अरे ये राजेश खन्ना याद आता है तो उसको प्रतिविज्ञान कहेंगे। यानी ऐसे कई मिमिक्रिएट्स हैं कि अनेक एक्टर के अलग अलग आवाज निकालते हैं तो उसको वो ये आवाज फला शत्रुघ्न सिन्हा का है ये आवाज फला का है ऐसा तो याद आना वो प्रत्यभिज्ञान है।
या ऐसा भी कहे ना कोई हमने बच्चा है वो 15 साल हुए उसको देखा पर वो उसको हमने बचपन में देखा था जब वो 5 साल का था, अरे तू कितना बड़ा हो गया, यानी उसी को हम उसके पूर्व अवस्था के साथ कंपेयर करते हैं। पर वो कब पॉसिबल है? कोई 15 साल का नया बच्चा देखेंगे तो होगा कि उसी बच्चे को देखेंगे तो होगा? समझ में आई बात? यहाँ यही बात है, सर्वथा अगर वस्तु क्षणिक होगी तो ये उसी की वो पूर्व पर्याय के साथ हम कंपेयर कैसे करेंगे उसको, क्योंकि वस्तु नई नई हो रही है हर समय, तो वहाँ प्रत्यय विज्ञान नहीं हो सकता। ये वाक्य करते हैं सर्वथा क्षणिक। आप बताएं।
बोलो बोलो बोलो।
वस्तु यदि सर्वथा क्षणिक हो, यानी नित्य टिकने वाली कोई चीज नहीं है, तो वो कंपेरिजन किसके साथ करेंगे? उसी के पूर्व परे के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब उसको प्रत्यय विज्ञान कहेंगे।
देखो क्या बात है, वस्तु स्वरूप कैसा है, नित्यात्मक है, यानी नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन कुछ लोग वो नित्य ही है, सर्वथा नित्य ही है ऐसा मानने वाले हैं, और कई लोग सर्वथा अनित्य ही है ऐसा मानते हैं। तो अभी हम दोनों ही बात कर रहे हैं, वो अनित्य वाले की क्षणिक है ऐसा। क्षणिक यानी क्या, के जो हर समय नया द्रव्य उत्पन्न होता है, नया द्रव्य उत्पन्न होता है, पर्याय की बात ही जानते नहीं वो। तो अभी मैंने आपको पूछा तो मैं बोलने वाला अलग, ने बोलने वाला और आप बोलने वाला अलग, और आपने उत्तर दिया तो उत्तर सुनने वाला भी नया आ गया, वो पहले पूरा। इसलिए क्या कहते हैं, अगर सर्वथा क्षणिक है ऐसा अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, प्रत्यय विज्ञान का नाश होगा। अभी खेल में देखो देखो, पहले क्या बताते हैं, अस्तित्व एटले सत्ता नामनो सतनो भाव, सतना यानी सत जो है कायम टिकने वाला ऐसा जो सत्व, उसको अस्तित्व कहते हैं। विद्यमान मात्र वस्तु नथी सर्वता नित्यपने होती, ये विद्यमान यानी जो अभी प्रकट जो हाजरा हजूर वस्तु यानी द्रव्य है, वो कभी सर्वथा नित्यपन नहीं होती, यानी नथी सर्वथा क्षणिकपने होती। अब मुझको लगता है ये अपन कल ही लेंगे।
हाँ।
जावानी के ज्ञान ते सुझे लोका।